نحمده ونصلي على رسوله الكريم المؤمن. قال الله تعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي القوم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي واصحابه وبارك وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يزيد المؤمنين عمره إلا خيرا. ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث کا ایک آخری حصہ ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. شیطان جو ہے انسان کے ذہن میں خطرناک سے خطرناک مشورے دیتا ہے، اور ہر مشورہ اس کا جو ہے وہ انسان کو جہنم میں دھکیلتا ہے. یہ تو بات سب جانتے ہیں. اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر انسان کو، بے شک کہیں ہو، اس وقت خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہو، مسجد نبی میں ہو، بیت المقدس میں ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی عبادت کی حالت میں ہو، وہ اپنے تھکتا نہیں ہے بدماشی سے، نہ اس نے اپنا کام کرنا ہے. کام یہ کرنا ہے کہ بھائی اس نے تو دھکیلنا ہے انسانوں کو جہنم کی طرف، پوری چھوٹ دی اللہ پاک نے. یہ اس کا اتنا خطرناک ہے، یہ جو اس کا دھکیلنا ہے اور ہمیں لے جانا ہے، اور جو اس کا مشورہ ہے، اس مشورے کو ہم کہتے ہیں وسوسہ. تھاٹ بھائی، یہ وسوسہ آ رہا ہے ہمیں، یہ وسوسہ آ رہا ہے. کہ جب یہ وسوسہ یا خیال جس وقت انسان کو ذہن میں گزرے، اور وہ کسی نیکی سے روکنے کا ہو، برائی کی طرف لے جانے کا ہو، چلتے چلتے اس لڑکی کو دیکھ لے، بول لے اندر یا یہ کام کر لیں، چھوڑ اس کام میں تو بڑا فائدہ ہے، یہ کر لیں، یہ کر، بہت وقت اس کے مشورے چلتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ. بہت گھبرانے کی بات ہے وسوسوں سے، یہ تو اپنی ڈیوٹی دینی ہے. ایک دشمن ہے، آپ اس نے حملہ کرنا ہے، تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ کیا پروٹیکشن کریں، اپنی حفاظت کریں. مجھے پتہ ہے شام کو میرا دشمن آئے گا، مجھے گھر میں مارے گا، تو میں ظاہر ہے کوئی گارڈ ٹھہراؤں گا، تالے لگاؤں گا. بھی جیت ہو جائے، ہم اپنے مکانوں کو رات کو بند کرتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، اس لیے کہ ڈر ہے کہ چور نہ آ جائے، تو یہ تو اس کا کام ہے. تو اسی میں سے ایک جو ہے اس کا ایک وسوسہ بڑا خطرناک ہے. اس وسوسے سے، اس تھاٹ سے وہ جہنم کو بھرتا ہے، انسان کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، تو بڑا خطرناک ہے. اور ہم اس کو مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، تو چل رہے ہیں. بتاؤں گا تو آپ اب بھی سوچیں گے ہم بھی چل رہے ہیں، مکمل چل رہے ہیں، آپ مانے نہ مانے چل رہے ہیں، پورا اس کے مشورے پہ ہر آدمی قائم ہے، کوئی بھی ہے، جہاں تک میرا تجزیہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے ایک بڑا اونچا کام یہ کیا ہے، انسان کے ذہن میں یہ ڈال دی ایک چیز، اور وہ یہ وسوسہ ہے کہ یار جو موت ہے نا، اس کا تو ایک وقت ہے. مانتے مانتے یہ کہتے ہیں نا، یہ کون کہتا ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ फिर मौत का वक्त हो सकता है, पता है मुझे, पता है बस 2 घंटे के बाद मेरी मौत आएगी, कोई है मुझे बता दे। किसी वली ने कहा, किसी नबी ने कहा, किसी को पता है? फिर मैं और आप किसी सोचते हैं बात, देखिए कितनी बड़ी बात है। और जब ये उसने बात में वहां डाल देगी, यार मौत का तो एक वक्त है, तो अब क्या होता है यार, बच्चा है कर लेगा काम, अभी तो जवानी है यार, अभी क्या फर्क पड़ता है इस काम करने का, यार अभी तो शादी हुई है, अभी शादी के 4 दिन है, क्यों बस फसा हुई चल रहा है, क्या अभी थोड़े मरना है इसने, जवान है अभी थोड़े मरना है, बूढ़े, तो किस चीज से वो रोक रहा है? नेक कामों से उसको रोक रहा है, इबादत से रोक रहा है, तकलीफ दे रहे हैं उसको। और हम भी फिक्र नहीं कर रहे, जवान बेटा है कोई बात नहीं, अब कोई कह रहा कहते ही नहीं, जवान है जी कर लेगा, आएगा मरने सोचे कितनी खतरनाक बात है, कितना रोक लिया उसने, एक जवानी को, जवानी में बच्चे को रोक लिया, बचपन से रोक लिया, सफेद बाल भी आ गए, नहीं यार ये तो आ ही जाते हैं, इसमें नजले के बाल हैं, नजला है ना इसको, पूरा रंग रंग, हत्ता की उसने ये काम डाल दिया और जहन में कि मौत है, और फिर नफ्स ने यह काम किया, उसने क्या एक पूरा फिक्र ही दे दिया, जुमला दे दिया मौत पर कि मौत का तो वक्त मुय्यन है, एक शेर में याद आता है, मौत का वक्त मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, शायर कह रहे हैं यार मौत का तो वक्त एक तान है, तू घबराता है क्यों, सो आराम से, फिक्र ना कर। तो नफ्स ने पूरा वसवस दे दिया कि यार तो वक्त आने वाला है, तो लिख दिया गया वक्त जिसमें मेरी मौत आएगी, कितना गलत है, सब ये करते इसी पे हमारा फलसफा है ना, हौल बिला कुत अल्लाह पे, इसी ने मरवा दिया है। बताऊं मैं आपको, बताऊं क्या ताल्लुक है मौत का, मौत का ताल्लुक जो है दोस्तों ऐसा है जो मेरी जहन में आया, मर्जी आप माने ना माने, मैंने तो बात करनी है। जैसे कि एक बॉस और सेक्रेटरी का है, बॉस बैठा है अपने कमरे में, मेज लगी हुई है, फाइल लगे, दूसरे कमरे में सेक्रेटरी बैठे, वो बॉस का सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी बॉस का क्या ताल्लुक है, वो पेशाब भी रोकेगा, उठेगा भी, क्यों, हो सकता है किसी वक्त भी मेरा बॉस बैल दे दे तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, है ये ताल्लुक नहीं, बिल्कुल है, वो सेक्रेटरी हिलेगा नहीं, भैया नहीं यार बॉस ने बुला लिया तो मैं क्या करूँ, इतना अलर्ट है कि बॉस किसी वक्त भी मुझे बुला सकता है, मुझे कॉल दे सकता है, कोई इसका सिम्टम्स नहीं है, कोई इसके इशारात नहीं है, उसके पास तो एक वो रखी है, फोन है, एक घंटी है, टंक करेगा तो मुझे जाना पड़ेगा, पता नहीं किस वक्त उसको जरूरत पड़ जाए, बिल्कुल बंदे का और अल्लाह का यही ताल्लुक है, बोले सुभान अल्लाह, अगर मेरी बात समझिए, बिल्कुल यही ताल्लुक है कि अल्लाह और बंदे का ताल्लुक ये, सिवाय मौत के मामले को, सिवाय अल्लाह के बंदे के कोई नहीं जानता, किस वक्त नजान अल्लाह ताला कॉल दे दे हमें बुलाने के लिए, बोले सुभान अल्लाह, हम क्या कह रहे हैं, हमारा क्या फलसफा है, नहीं जी अभी तो सेहत है, सेहत के बाद बीमार होगी, बीमार के बाद भी कैंसर होगा, कैंसर के बाद टीबी होगी, टीबी के बाद हॉस्पिटल जाएंगे, अस्पताल का इलाज होगा, तो सोचते तब मरूंगा, ये है कोई कानून ना सर, कभी देखा आपने कि बच्चा जा रहा है 12 साल का 25 साल के बाहर निकल रहा है, उसको पता है मेरी मौत आएगी, वो तैयारी की उसने, गाड़ी बैठा है, गाड़ी चलाई, फोन आ गया, ये बच्चा आपका था, एक्सीडेंट हो गया, हो रहा है ना जमाने में हो रहा है, वो बूढ़ा था, वो बीमार था, तो जीवन था, तो फलसफा वही है मौत का, अल्लाह का और बंदे का मौत का ताल्लुक कैसा है, देखिए एक बॉस और एक सेक्रेटरी का ताल्लुक है, और ये बहुत बड़ा वसवा है शैतान का, कितनी बड़ी बात है ये कि हमें सारी दिन से रोक लिया उसने, वो लड़का समझ जाए 25 साल का, मैं तो भी जवान हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ो, मेरी मौत थोड़ी आएगी, माँ बाप भी कह रहे हैं जो चाहे तू कर, शाम को जा रहा है लड़कियां ना खेलता पड़ रहा है जी, कोई बात वो बाहर जा रहा एक्सीडेंट होगा उसको खत्म हो गया, अच्छा तो अब उसका हिसाब नहीं होगा, उससे नमाजें नहीं पूछी जाएंगी, उससे गुनाह का नहीं पूछा जाएगा, उसका गुनाहों का हिसाब नहीं होगा, उसका वैसे ही हिसाब होगा जिस तरह हमने जो कानून ने बनाया, कितनी उम्र के बाद उसका नमाज शुरू हो जाती है, इतनी उम्र के बाद ये सब होते सारा कानून, हम खुश हो रहे हैं, जवान था जी कोई नहीं निकल गया, मरवा दिया उसको पुश्तान, तो सबसे पहली चीज तो ये सोच ले आदमी, ना इंसान बीमारी से मरता है, ना इंसान किसी और मुसीबत से मरता है, ना कोई ये बहाना है कि आज मुझे कैंसर हो गया तो बस मैं पज ही मर गया, ये किसने कहा है। हजारों लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कोई बीमारी होगी मरे नहीं, बस करती क्या था लोग, आज आपको कह दिए कैंसर हो गए फौरन बीमार होगी, तो वो आदमी आधा पिस्ते पर लग खबरदार, जब तक हिम्मत है मत बैठो बिस्तर पर, बीमार मत समझो अपने आप को, और जहन में भी ये बात लाओगे मेरी इससे मौत होगी बिल्कुल ना लो, क्यों तो ये तो इतना बड़ा एक दाव समझे शैतान का कि उसने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं बीमार होने के बाद मरूंगा, मेरे मेरा आपका ताल्लुक तो ये नहीं, पता है कब मैं बुला लूंगा मुझे, कोई ये दलील नहीं है कि आदमी बीमार होकर मर गया, हमें पहले कोई अगर बीमारी को बता दी जाए किसी किस्म की तो हमारे फौरन जहन बस जी हम तो चले गए खत्म हो गए, ये किसने कहा। बहुत से ऐसे मरीज पड़े हैं डॉक्टर कहता जी बस अभी दिखा सकता हूँ आपको, मेरी जिंदगी मैंने देखी हजारों बीमारी, मौत नहीं मर नहीं रहा हूँ चल रहा, क्योंकि अभी तक काल नहीं आई, जब अल्लाह चाहेगा वो उसको बुलाएगा, है क्या ताल्लुक हमारा अल्लाह से, मौत का ताल्लुक क्या है, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी एक हदीस मैंने आपको सामने पढ़ी है, चलते चलते जहन में आई, इन्नहु ला उमरहु मुमिनीन ला यजूदुल मुमिनीन उमरहु, हदीस में कहा गया है। याद रखो एक बात, अल्लाह सुभान ताला मोमिन की जिंदगी को बढ़ाता है सिर्फ इसलिए इल्ला खैरा के कोई नेक काम कर ले, बोले सुभान अल्लाह। क्या पहली बात समझा दी, अब सुन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं भाई मोमिन जो है ये आम दूसरे लोगों के लिए नहीं है, उनके दूसरों के साथ ताल्लुक ऐसे ही है, लेकिन उनका जो है मोमिन का फर्क ये है कि मोमिन का मामला है कि उसको तो खैर मिल सकती है, वो तो निकी करेगा, लेकिन वो तो इस फलसफे से निकी नहीं कर सकता, वो तो गया फारिग फारिग, उसको ताल्लुक नहीं इस चीज़ से, तो यहाँ खास मोमिन का ताल्लुक फरमा है, इन्नहु ला यज़ीदुल मोमिनीन, कि मोमिन के जो है जिंदगी को अल्लाह सिर्फ इसीलिए बढ़ाता है, इसीलिए बढ़ाता है कि अल्लाह है कि वो कोई नेक काम कर ले। हाय हाय अब सुने आगे बात, सुभान अल्लाह बढ़ाता है। एक फलसफा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ना कि भाई हमारा मौत किसी चीज़ पे लिखी नहीं, कोई वक्त मुयन नहीं है, कौन बढ़ाता है, सुभान अल्लाह, अब कैसे बढ़ाता है वो भी सुन लें, अब मौत आती कैसी है, मौत का वक्त कौन सा है हमारा, मौत का वक्त हर वक्त है, बोले सुभान अल्लाह। इमाम बता रहा है कि बिल्कुल गाफिल ना होना, ये शैतान का वसवसा है, ये बड़ा चक्कर दे रहा है तुम्हें, बिल्कुल गाफिल ना हो इस चीज से, मौत का वक्त हर वक्त है। क्या आपने दुनिया में नहीं देखा कि उसने सिजदे में गया और सिजदे के बाद उठा नहीं, वक्त उसका कुछ वो था, अल्लाह ने उसको कॉल कर लिया, उसको एक रुकू में खड़ा है बिल्कुल ठीक ठाक है, आए भी चार इंडिया से चंदा लेने आया खड़ा है, रुकू में झुका नहीं वहीं के वहीं रह गया, वक्त उसका वहीं था। एक आज दरवाजे से निकला है, मैंने एक देखा एक साहब है जुम्मे का वक्त है, अब ये जिनका वो अच्छे आदमी से सलाम दुआ थी, एक जूली है पता क्या नाम उसका आदमी है, हाँ जी बम्बे जूलो शायद, बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे, बड़ा पक्का आदमी, अच्छे इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी शक्ल दौड़ से नहीं, उनको बहुत पक्का नमाजी था, उस बड़ा बेहतरीन नमाजी था, मुझे बड़ा पसंद आता था उसकी नमाज, बहुत पहुँचता था। अब उसको देखें घर से चला है, नहाया धोया, जुम्मे का वक्त है, हाँ जी मैं तो उसको वहाँ नमाज पढ़ता था, जुम्मे का वक्त है, अपने घर से आ रहा है, दुआ पढ़ता आ रहा है, जुम्मा पढ़ने आ रहा है, ठीक ठाक घूमता दुकान से तभी पकड़ा के आ रहा है, क्या क्या जूते उतार है, जूते उतार के भी दो कदम ही रखे मस्जिद जहाँ जूते उतरते हैं कि उसका वक्त आ चुका था, बोले सुभान अल्लाह। तो नहीं है कोई वक्त किसी का नहीं, अल्लाह कहते क्या है कि हकीकत यह है कि मोमिन के और वक्त क्या है मौत का, वो इतना तनासुब अल्लाह ने बताया कि एक सांस जो ऊपर चला गया वो नीचे नहीं आ सकता, सुभान अल्लाह, इतना वक्त है इंसान के पास। और ये फलसफा जो था मौत का सबसे बड़े कौम जो समझने वाली थी वो सहाबा कराम थे, वो सहाबा कराम थे। हज़रत अली से किसी ने पूछ लिया मौत का वक्त क्या है, कहता मौत का वक्त क्या है, मौत का मैं तो इतना समझता हूँ कि जो पलक झपकता हूँ ना कि ऊपर जो पलक गई है और नीचे जो गई है इतना भी यकीन नहीं मौत का, तो अल्लाह ने वक्त दिया ही नहीं इसका। ऊपर वाला सांस जाता है तो फरिश्ता पूछता है रब इजाजत है कि नीचे जाऊँ, फरिश्ते मुकर्रर हैं, अल्लाह कहता जाने दे, नीचे से ऊपर जाता पूछता है कि भाई तो है अल्लाह ताला ऊपर कर दूं सांस, कहता नहीं, तो पता ही चला ना ही कोई बीमारी मार सकती है, ना कोई सेहत मार सकती है, ना कोई एक्सीडेंट मार सकता है, वरना तो कोई बाहर नहीं निकले। तब मैं जाऊंगा तो गाड़ी में बैठूंगा या उसका एक्सीडेंट मेरा भी हो जाएगा, दुनिया ही रुक जाए। मैं जहाज में बैठूंगा, जहाज तो एक्सीडेंट होते हैं, मैं जहाज से रुक जाऊंगा। या इसको कैंसर हुआ, मुझे भी कैंसर हुआ, मैं तो मर जाऊंगा। या इसको टीबी हुआ, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, फलसफा नहीं। बल्कि क्या बताते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद क्या फरमाते हैं, नहीं नहीं ये बिल्कुल ना समझना, तेरा मौत का वर हर वक्त है, और जब ऊपर से नीचे तेरा सांस आया तो अल्लाह ने तेरी जिंदगी को बढ़ा दिया। इन्नहुला यजदुल मोमिनीन अमर, और ये ऊपर जिंदगी का जो तुझे वक्त बढ़ाया है, इसमें एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, इसमें तू मोमिन है, उसको समझ। सुभान अल्लाह बोला, इस बात को समझ के, तू तो मर चुका था, मैं मर चुका हूं, जिसका मेरे ऊपर सांस गया ना, मैं मर चुका हूं, हम नीचे सांस लिया, ये अल्लाह का फजल है, उसने मेरी जिंदगी को बढ़ा दिया। क्या हदीस है, सुभान अल्लाह, अंदाजा लगे, सांस गया ना, मैं मर चुका हूं, अब ये उसका फजल है, अब जो सांस मेरे ऊपर गया, मर चुका हूं, अब वो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अल्लाह अकबर, मैंने गुनाह की है, अभी लड़की को देखा है, बदमाशी की है, बुराई की है, फलां काम किया, गुनाह किया, नीचे सांस आ गया, मैं तो खत्म। लेकिन अल्लाह कहेगा नहीं, मैं नीचे सांस दे रहा हूं, तेरे साथ एक बहुत बड़ी एहसान कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, जीता हूं मैं, बढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या कर, इल्ला खैरा, फौरन इसमें खैर कर जाता। हाय, इसको जाया मत करना। ये है इंसान की जिंदगी दोस्तों, कितनी जबरदस्त बात है। ये मोमिन को तो सोचना ही नहीं है, हर वक्त उसे सोचना है कि मेरी जिंदगी बढ़ रही, बढ़ गई, बढ़ गई। और बढ़ने के बाद क्यों बढ़ी, अल्लाह का सिर्फ मैंने इसलिए बढ़ाई तेरी जिंदगी, मैं तेरे करतूतों को अच्छी तरह जानता हूं, तो बिल्कुल जहन्नुम में खड़ा था, अच्छी तरह मुझे पता है तू जो है खूब जानता हूं, तो ये जो मैं अगला सांस तुझे दी है इसलिए नहीं दिया कि तू सो जा, कमाई कर, या दुनिया के कोई काम कर, या इसमें तू और चीजें तलाश कर, या और बदमाशी के लिए तुझे काम दे दिया है, जो तू और चौड़ा हो जा, नहीं नहीं नहीं, दूसरा सांस मैंने इसलिए दिया है कि मैं, तू मोमिन है, मैं तुझके खैर का मामला करना चाहता हूं। दो काम तू कर, जो ऊपर वाले सांस में जो तूने अब तक गुनाह किए थे, चांस तुझे मिल गया है, फौरन तू इस्तगफार कर दे, पक सहना करना, क्योंकि अगला सांस जब जाएगा, मौत तो यही तो होती है, जब मौत तो यही है कि एक सांस जा रहा है तो कोई नहीं करा, मर गया, जब सांस रुक गया जी मर गया, नफ्स चढ़ी कोई नहीं गएगा, टक टक चढ़ी, टक तो कोई नहीं गएगा, जब टक रुक गई नीचे नहीं आई, कहीं बंदा तो मर चुके हैं जना, ये तो बात है। और ये अल्लाह अल्लाह तआला फरमा रहा है कि जब ऊपर जा रहा है तो तेरा मामला ये है कि रोक लेता, लेकिन अगर नीचे आ गया तो समझ जा तुझे अल्लाह ने मोहलत दे दी। अब ये ना सोच बीमारी आएगी, मैं बीमार होऊंगा तो तब मरूंगा, एक्सीडेंट होगा तो तब, नहीं नहीं, ये तेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये शैतान का फलसफा है, तुझे नेकी से रोक रहा है। मैं रब तुझे ये बता रहा हूं कि तू बहुत खतरनाक रास्ते पे है, तूने बड़े गुनाह किए हैं, बहुत सख्त सजा है, लेकिन ये तेरा फजल है कि मुझे चांस दे रहा हूं, इस्तगफार कर लेगा तेरे सारे ही माफ कर दूंगा। बताओ मेरे दोस्तों, जरा मैं अपने से पूछता हूं कि कितनी जिंदगी को हम जाया कर, एक एक सांस अल्लाह ताला कहता है मोमिन का बहुत कीमती है, उसमें जन्नतें बनती हैं, उसमें बख्शिशें होती हैं, उसमें मुकामात तय करता है, एक सांस इतना कीमती है, एक सांस। याद रखें कि हम मोमिन के लिए इतना कीमती है कि फरमाया ठीक है, दुनिया से कहीं नहीं रोका अल्लाह ताला ने, चलता रहे काम, वो तो जिस वक्त मैं बैल करूंगा तुझे बुला लूंगा, लेकिन काम तेरा क्या है कि हर सांस तेरा ऐसा हो जो कीमती बन के निकले, पछताएगा, एक सांस पे पछताएगा, एक सांस की बड़ी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, तू मोमिन नहीं समझता इस बात को, जिससे इस कीमत को घटाया है, यही तो वसवसा शैतान का सबसे बड़ा है, तुझे मोमिन मैंने बनाया ईमान देने के बाद, तेरी कीमत इतनी रख दी कि एक एक सांस पे वो मुकामात तेरे हैं जिसका तू तसव्वुर नहीं कर सकता। पूछो मरने वालों से, कब्रों में चीखते हैं कि एक दफा हमारी जबान से अल्लाह कहने दे, पता खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, कितनी दफा आप चाहे कह लें इस वक्त, अल्लाह कितनी चाहे दफा आप कह लें, तस्बीह कितनी चाहे फेर लें, हाय हाय, मरने के बाद जब सांस से ऊपर से खत्म, नीचे नहीं आया, फिर सब कुछ खत्म हो गया, तेरा सब खत्म हो गया, बंडल बंद गया, अब वो जो काम किए उस पर अजाम मिलेंगे, तुझे सजाएं मिलेंगी, कब्र तुझे दबाएगी, हर चीज कोई ऊपर वाले लोग तुझे नहीं बख्शवा सकेंगे, चाहे जितना भी तेरे लिए कुछ करते रहे, वो तेरे कब्र के अजाब तेरे लिए तैयार होंगे। एक चांस दिया था कि तू उस सांस में इस्तगफार कर जाता तो मैं तुझे सब माफ हो जाता। बहुत बड़ा पैगाम है दोस्तों, तो मोमिन की जिंदगी अब कैसे गुजारनी चाहिए, इतनी गफलत से नहीं, इंतजाम किए अल्लाह ताला ने, अपने हर सांस को इतना कीमती बना लो कि हर सांस के साथ अल्लाह निकले। यही है जिक्र अल्लाह, जो औलिया अल्लाह ने इसको पकड़ा। कहीं ने मना किया आप दुकान ना करें, कहीं ने मना किया आप काम ना करें, कहीं ने मना किया आप टैक्सी ना चलाएं, कहीं नहीं क्या सब अल्लाह ने दिए। लेकिन क्या कि सांस को गाफिल ना कर, हर सांस तेरा कीमती, हर सांस में तू क्या बोल, अल्लाह बोल उसके साथ। और सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों की जिंदगी जाती है जब दिल पे प्रैक्टिस करते हैं आदमी। किसको मुझे बताएं किसको गाड़ी आती है, सीखते हैं, टेस्ट देते हैं और बड़े बड़े दुआएं मंगवाते हैं, यार जी कल मेरा टेस्ट है साहब, थ्योरी टेस्ट बड़ा मुश्किल हो गया। होता ही नहीं होता, कितनी मेहनतें करते हैं, किसी कोशिश आदमी करता है, करते हैं ना, तब जाके कहीं गाड़ी आ जाए तो फिर गाड़ी सीखना, फिर गाड़ी सीखने आ गई तो फिर कोई कहता है जी मैं बड़ी गाड़ी चलाना है, कोई कहता है टैक्सी चलाना है, कोई कहता है जी फलां गाड़ी चलाने, वो आगे जो होगी उसको किसी की प्रैक्टिस की, उसने लर्न सीखा, सब कुछ किया, मेहनत की। तो दिल पे, दिल आवारा है हमारा, दिल आवारा हो चुका है शैतान के वसवसों से, गाफिल कर दिया, बदमाशियों पे लगा दिया, और हुक्म मानता है हर चीज शैतान का, दिल हमारा आवारा कर दिया हमने दिल को। वो कहां लगे नाम को सुनने वाला है, मुझे बताया वो कहां सुनते हैं इन बातों को, आवारा कर दिया दिल को, बस से बैठ चुके हैं शैतान के, जम गया उसमें। हदीस के अंदर आता है कि शैतान जो है दिल के ऊपर बैठा है इंसान के, वो तो इजाजत लेके दिल, उसे पता है कि मैं अंदर भी जा सकता हूं, वो तो इंसान के खून में रगों में ऐसा दौड़ता है खून की तरह, और हम इतने चढ़ुए फिर रहे हैं कि नहीं ये हमारा ख्याल है, हमने काम मरना है। कितना झंझोड़ती है हदीस और कुरान, समझते ही नहीं हम, पढ़ते रहते सुनते पहुंच डीप, अल्लाह वाले पहुंचते हैं डीप इन बातों के अंदर, क्रोध के लाते हैं ऐसे मोती के इंसान हैरान हो जाता है। खुदा की किस्म मैंने हदीस पढ़ी तो मेरे जहन में नहीं थी ये बातें, वल्लाह बिल्ला मैं मराखी में चला गया, मैं अल्लाह मेरा दिल करता है इस हदीस में बात करूं जाके, इसमें मेरी इस्लाह फरमा, तूफान आ गया बातों का। सुभानअल्लाह, अल्लाह कहते ये तो सुंदर है मेरे इल्म के हदीस और कुरान। मैंने अभी पूरी हदीस नहीं पढ़ी है, मैं आपको बता दूं सही बुखारी मुस्लिम की हदीस से पढ़ी आप सब, इल्मा कर रहा हूं पता होगा क्या होंगी इसके अंदर चीजें जो अल्लाह ने कुरान हदीस हमारे लिए उतार के दी है। एक एक लफ्ज कुरान का हदीस का सुभानअल्लाह हमें जहन्नुम से निकालने वाली चीज है, ये जहन्नुम से निकालती है दोस्तों। इसके तफरी ना सुनो, हम तो पढ़ते हैं ना हज़रत यूसुफ का किस्सा, ज़ुलैखा का, यूसुफ का किस्सा, मजे ले लेके हर चीज जो अल्लाह का कुरान के एक एक लफ्ज है वाहिद एक चीज के लिए आया है, हिदायत, हिदायत किया कि तुझे मैं जहन्नुम में नहीं जाने दूंगा, तुझे मैं जन्नत में पहुंचाऊंगा, मेरा कुरान तुझे लेके जाएगा, शेल्टर है तुम्हारे लिए। तफसीरें हो रही हैं और बड़े बड़े बात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन ठीक पॉइंट जाता कि हमें जहन्नुम से कैसे बचाए। मुझे बताएं आज इस हदीस को और हम समझ जाएं, पूरी कौम समझ जाए कि तेरा हर सांस कीमती है और तू मर चुका है, मरता और जिंदा होता है हर लम्हे तू, सुभानअल्लाह, हर लम्हे तेरी मौत है हर लम्हा जिंदगी। अल्लाह कहता है कि उसको तू ऊपर जब मर जाता मैं ना भेजता तो क्या होता, अब यहां कोई बीमार है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर नहीं, हम इंतजार करें। बेवकूफ हैं लोग जो इन बीमारियों से डरते हैं, ये कोई मौत का जरिए नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से डरो जो अल्लाह बता रहा है। डॉक्टर कहते उससे डरने बैठ जाते हैं, छोड़ो इस बात को क्या रखा है, जब तक जान जाने मस्जिद को छोड़ो ना, अल्लाह के जिक्र को छोड़ो। मौत तो है वो तो हर रोज मर रहे हैं, हर लम्हे मर रहे हैं, बैठे मर रहे हैं, वो जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों इस मतलब सिर्फ एक ही मैंने अर्ज जो किया आपसे कि गाफलत में मत रहो, बहुत कीमती इंसान अल्लाह का जिक्र सीख लो, बस जो चाहे दुनिया के काम करो ना, तल हम तिजारत अल्लाह तारा करते, कोई तिजारत कोई माल दौलत, अम्वालुकुम औलादुकुम ज़िक्रुल्लाह, कुरान कहते हैं ला तरहम तिजारतुम अम्वालुकुम औलादुकुम ज़िक्रुल्लाह, कि देखना कोई माल ना कोई तिजारत ना औलाद तुझे अल्लाह के जिक्र से ना रोके, क्योंकि एक जिक्र ऐसे है जो तुझे गफलत में नहीं जाने देगा, सुभान अल्लाह बोलो, नहीं जाने देगा तुझे गफलत, हर सांस तेरा कीमती बनाएगा, तुझे मुस्लिम लाता रहेगा, क्योंकि जिक्र की सिफत यह है कि हर जिक्र एक दफा जो इंसान अल्लाह कहता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, ये गाड़ी है, कहता हर वक्त तेरा अल्लाह कहना मुझे करीब करता रहेगा, जब तू मेरे करीब होगा तो मैं तुझे क्यों तंग करूंगा, अल्लाह ताला कहता मेरे कुरब पे तू पहुंचेगा तो मैं कैसे करूंगा, ऐसी गाड़ी मैंने तुझे दी कि जब तक तेरा दिल अल्लाह अल्लाह करता रहता है तो मेरे पास बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वैसे तुमने अल्लाह ने मेहनत की, बस इस पर हमें अब करना क्या है, मेहनत देख लो बहुत बड़ी चीज है, मेहनत कीमती बनाओ अपने आप, कहीं मैं आपको किसी काम से नहीं रोक रहा, ना बीवी बच्चों से रोको ना दुनिया से रोको किसी, मैं तो सब ही कह रहा हूं कि अपने आप को कीमती बनाओ। कीमती बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये एक पूरी बात है कि पांच वक्त हमने नमाज पढ़ ली तो पांच वक्त के बाद जोर से लेके अब हम जनाब असर तक फारे हैं, पहलवान बन जाए जो चाहे करते फिर बेकार हो गए। ये क्या बात हुई? बस जी वो नमाज पढ़ ली है जनाब, अब असर की पढ़ेंगे तो जो बीच में वक्त है वो कहाँ गया? इतने फारिग अल्लाह ने पैदा में किया है बताएं। अल्लाह कहते बस ये मतलब है, ये मतलब नहीं, तेरा मतलब तो ये हर वक्त तू मेरे साथ हो, अपने आप को कीमती बना। ये तो है कि तुमने जी अभी शैतान कैसे दो आप कहें किसी यार नमाज पढ़ तो है ना, असल में नमाज पढ़ लिया और हम इससे बात क्या करें, कुरान की तलावत तो कर ली हम क्या करें, यानी कोई राजी ही नहीं है इस बात के लिए कि हर सांस के साथ अल्लाह को याद करे उसकी तरफ से। जब अल्लाह ताला कह रहा है मैं तुझे दी जिंदगी से ली वाज़ह तौर पे कहा इन्नल्लाह यज़िदुल मोमिनीना उमरहु, मैं तो तेरी जिंदगी जो बढ़ाई है नीचे जो सांस दी है मकसद एक था कि तू नेकी कर। सुन नेकी की दो चीजें हैं कि पिछले गुनाहों की इस्तगफार कर और अगले माल की माल कमा उसके लिए जो तुझे काम आएगा। ज़बान पे इस्तगफार रहे हमेशा याद रखे, हमेशा याद रखे क्योंकि हमें नहीं पता किस वक्त हमसे गुनाते, इस्तग़फ़ार हर वक्त ज़बान पे रहे, इस्तग़फ़िरुल्लाह इस्तग़फ़िरुल्लाह, और दिल में हर वक्त अल्लाह का जिक्र रहे, बेहतरीन जिंदगी है फिर जो चाहे काम करो। इसके लिए क्या करना है? मेहनत करना है। दिल हमारा आवारा है उसके लिए आपको जो हम कहते हैं मराकबा, आप यहाँ आ जाते हैं अभी थोड़ी देर की चस्का देता हूँ आपको जिक्र के मराकबे का, ये तो घंटों चाहिए इसके लिए। दिल में अधिकार आदत डालना है आपको, दिल को प्रैक्टिस करानी है ताकि चल पड़े वो, तो उसके लिए आपको जो जिक्र सीख लें दिल पे, मैं बता देता हूँ जिसने नहीं सीखा सीख लिया जिन्होंने, क्या है कि वो इस पर मेहनत करें भाई, दिल को इतना आदि कर लें अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जाओ वो भी काम कर रहे हो दिल आपको अल्लाह की याद के साथ अल्लाह अल्लाह कर मर जाए, आ जाए मौत आनी तो आ जाए। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं जब वो जाते हैं अस्पताल में वो कहते हैं जी आपको तो कैंसर हो गया, तो ठीक है हो गया तो क्या करें, उनकी जिंदगी में कोई फर्क थॉट्स में कोई फर्क नहीं आता, मेरा पेट खराब हो गया जी मेरा दिल खराब हो गया, उन फिक्रों में नहीं रहते तो ये से कोई मामला है, इससे कहा मौत मेरी लिखी है। लेकिन फलसफा ऐसा दे दिया शैतान ने कि जब तू बीमार होगा जब तेरा पेट में दर्द होगा जब तेरा ये होगा तो बस तू मरेगा। ये क्या बात हुई? मर तो हर वक्त रहा इंसान, तो इतना डर जाता है इंसान मौत से कि उसकी फूंक निकल जाती है। हर लम्हा इंसान की जिंदगी मौत है दोस्तों, कोई ऐसी चीज इंसान को मार सके। जवान जाते हैं छोटे छोटे बच्चे जाते हैं बेचारे किसी किसी हालतों में चले जाते हैं, अल्लाह को बुला लेता है, अल्लाह की हिकमतों पे दुनिया किसी जल्दी बुलाता है किसी को देर में बुलाता है, उसकी सब अमानत है। चाहे तो सबके बच्चे ले ले एक हमारे साथी हैं माशाल्लाह, तो अजीब स्टोरी उनकी, कहते मेरे बच्चा एक बढ़ता है 16 साल का होता है अल्लाह को प्यारा हो जाता था, एक बढ़ता है अल्लाह को प्यारा हो जाता है, एक बड़ा सारे बच्चे खत्म बेचारों के जनाजे पढ़ पढ़ के थक गया, जो एक बची है वो बेचारे जहनी ही उसके सही नहीं है। अल्लाह की हिकमत है इसमें, न जाने क्या अल्लाह की हिकमत। तो हमारा एक काम है वही बस, हमारा अल्लाह का मामला कैसा है, एक बॉस और सेक्टरी वाला ऑल द टाइम वो रेडी, पता नहीं किस वक्त बल बजे हम अल्लाह बुला ले, कोई बहाना नहीं चाहिए हमें कि हम बीमार होंगे तब मरेंगे या फला होगा तब मरेंगे बुढ़े कम नहीं, नहीं हर सांस कीमती है मोमिन का, और कीमती इस किस्ता बनेगा जब हर सांस के साथ हम अल्लाह को याद करेंगे। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत भी नहीं, इतनी नेचुरल चीज़ दिल पाक ने दिल एक हमारा कुदरती दिया कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, उसके लिए सिर्फ हमें ये काम करना है कि हम सुबह और शाम खुद बैठ कर, मेरे साथ तो बैठेंगे बहुत स्वाब है सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रैक्टिस भी होती है आए बहुत फ़ायदा है इसमें, लेकिन खुद मेहनत करनी है आपने, आप वक्त निकालना है, तो वक्त निकालना है आधा घंटा पौना घंटा रात को निकाल, दोपहर को बैठें सहर के बाद बैठें असर के बाद बैठें, आँख बंद करें कुछ बस दिल के अंदर अल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ एक हफ्ता मेहनत कर ले आप बस फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिल खुद अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाएगा, जब ये कैफियत हो जाए फारिंग अल्हम्दुलिल्लाह बस फिर ये है। जरा सोचना होगा आपने, ना कोई वजू की जरूरत है ना किसी तनहाई की जरूरत है, ना आँखें बंद करने की जरूरत है, लोग गप्पे मारेंगे आपका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, ना आप गीबत करेंगे ना आप किसी की चुगली करेंगे, ऐसा कंट्रोल कर लेगा अल्लाह सुभान आपका हर सांस ऊपर जो नीचे निकल रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी मौत आई कब है, पूछें किसी मन ने उसको नहीं पता चलता, वो तो अपने चक्कर में होता कि मैं ऊपर नीचे में अल्लाह अल्लाह ही करता रहूं, उसको यही नहीं पता चलता भाई कितनी बड़ी हदीस है कि अल्लाह का जिक्र करने वाला हंसता हुआ जन्नत में चला जाता है। हदीस कैसी कैसी चीजें बताती है उसको पता ही नहीं, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। اب یہ انتظار کریں جی ہمارا حلال نہیں ہے پیسہ, ہم تو فلاں نہیں ہے جی, میں تو بڑا بیمار آدمی میں فلاں, بالکل کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے. ذکر کو آج ہی شروع کر دیں, ہر حالت میں شروع کر دیں. جتنے انسان خراب ہے بالکل پرواہ نہیں, بس استغفار کرے آدمی اور کہ اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا, ہوں تو بہت کمزور لیکن ذکر تیرا آج سے شروع کر رہا ہوں, اور ہر بات زبان پہ جب بھی گناہ ہوگا استغفار ضرور پڑھوں گا. کوئی بدماشی کی, کوئی گناہ کیا, کوئی حرام کام ہو گیا, کیا پڑھنا ہے ہم نے, ختم بس. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, شیطان کہتا ہے استغفار کیوں پڑھ رہا ہے یار, تو اب گناہ کر رہا ہے تو تیرے استغفار کیا فائدہ دے گی, کتنا وسوسہ. شیطان چاہتا ہی نہیں کہ آپ اللہ سے ملے, اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے ملے. اللہ نے کب کہا کہ تجھ سے گناہ ہو جائے تو استغفار نہ پڑھو. جانتے ہیں ہم کمزور ہیں, ہم سے گناہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے میں ایک بدماشی کر رہا ہوں یا کوئی میں حرام کام کر رہا ہوں, مجھ سے کوئی حرام کام ہو رہا ہے, تو ہم نے کہنا کیا ہے استغفر اللہ, وہ کام ہو رہا ہے, تو وہ استغفار کیا کام کرے گی, الحمدللہ ایک دن آپ کو اس گناہ سے نکال دے گی, اللہ سے ملنا دے گی. بہرحال ان شاء اللہ کریں گے کوشش, ان شاء اللہ ذکر بھائی اس پہ غفلت نہ کریں. میں تو زور لگا سکتا ہوں آپ کی مرضی, تو میرا زور لگانا تو یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اللہ ثواب تو مجھے مل جائے گا, لیکن آپ میرے بھائی میں دل کرتا ہے ہم ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے ہنستے ہوئے جنت میں جائیں, تب تو مزہ ہے کہ بھائی ذکر کا کوئی فائدہ ہوا. میری باتوں کا آپ سمجھیں, میں حدیثیں بھی آپ کو سنا رہا ہوں. بس اتنی محنت کر لیں, آپ نے کام کریں جو کچھ کرنا ہے, لیکن وقت ملتا ہے آپ کو آدھا پونا گھنٹہ کچھ نہ کریں, بیٹھ کے پکا پہلے پریکٹس کریں دل پہ کہ ہمارا دل چلنے لگے اللہ اللہ. اور کسی جس نے نہیں ذکر سیکھا عزیز کے پاس آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں الحمد للہ, اسی وقت آپ کو ذکر سکھا دیں گے, بس اب لگ جائے پھر کام پہ شروع ہو جائے اللہ اللہ کرنا, کوئی اس میں وہ بات نہیں. بس ایک ذکر سیکھنے میں جو ایک شرط ہے, وہ تو شرط یہی ہے کہ جب تک ہم سرکار دوسم کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو کوئی چیز اثر تو نہیں نہ کرتی. پر شرط ایک یہی ہے بھائی آدمی داڑھی پوری ہونی چاہیے, نہیں ہے تو اس کی نیت کرنی چاہیے داڑھی تو میری پوری ہو, کیونکہ کوئی بھی اللہ سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا, کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ نبی ہوں گے سنت پہ عمل نہیں ہو. یہ واجب ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو ثواب کر لو تو قبول, نہیں نہیں یہ تو واجب ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا تیری نیکیوں کو. اس میں بڑے مسئلے ہیں, تو پہلے صف میں کھڑا ہوں دیتے جس کے داڑھی نہیں ہوتی, اقامت تو بہت بڑی بات ہے, اذان پہلی صف میں یہاں نہیں دیتے, اس کو کہتے پیچھے جاؤ تم گستاخ, کام تو سارے ادھر سے بنتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں, اس سے چھوڑ کے آپ شارٹ کٹ مار رہے ہیں الگ طرف, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اسی راستے سے جانا پڑے گا. تو ہاں جو ذکر سیکھنا چاہتا ہے اس شرط کو پورا کرنا پڑے گا کہ داڑھی پوری ہونی چاہیے, کبھی نہیں ملے گا اللہ سے, نہ اس کو ذکر فائدہ دے گا نہ ذکر اثر کرے گا, وہ بیکار ہے. پوری ایک مشت کتنی ہونی چاہیے, ایک مشت یہ ہے داڑھی جی, کاٹنے کی اجازت ہے چاروں طرف سے, ایک مشت ایک انچ بھی کم نہ ہو, ایسے ہو ڈیلی جا پوری بس. ہاں جس کی قدرتی نہ بڑھتی ہو بیچاروں کی وہ تو اور بات ہے, لیکن جو کاٹتا ہے سوال ہی پیدا نہ, کوئی بھی چیز اثر کرے, کوئی بھی ہر چیز مکرو حرام ہوگی اس کے لیے اس کے بغیر اللہ نبی کی سنت کو کرنے کے بعد, اور عذاب ہوگا اس کو سخت. بالکل گارنٹی سے بات کر رہا ہوں آپ کو, مفتیان کی باتیں کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کر رہا. تو جس نے ذکر سیکھنا ہے داڑھی پوری ہو, باقی تو گناہ کے لیے استغفار اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور پھر ذکر سیکھ لے الحمدللہ, میں آپ کو بتاتا ہوں میں نہیں, یہ قرآن اور حدیثیں گارنٹی دیتا ہے, ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. واخر الحمدللہ رب العالمین.